मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों नमस्कार। आज 20 अप्रैल 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं अमित कुमार जो किकाकुई सोनगढ़ जिला तापी व्यारा गुजरात से हैं, राहुल कुमार हरिलल गमित आप नौशान हाजीपुर वैशाली बिहार से हैं और हरिओम आप उत्तर प्रदेश से हैं। तो अमित राहुल और हरिओम आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों कुछ सूचनाएं हैं जो सामान्यतया मैं हर शुक्रवार को आप सबको देता हूं। नई सूचना कुछ भी नहीं है, पिछले शुक्रवार की सूचनाओं को दोहरा रहा हूं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर जैसा कि आप जानते हैं नहीं आता है तो नहीं आएगा। हाँ, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स एज इट इज आपको कल मिलेंगी और उसी पैटर्न पर मिलेंगी जैसे कि अभी तक मिलती रही हैं। योजना के आपको दो आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी आपको दो आर्टिकल्स मिलेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, तो टोटल आपको चार आर्टिकल्स मिलेंगे। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जरूरी नहीं है कि चार आर्टिकल्स चार टॉपिक पर हों। कोई आर्टिकल अगर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो उसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन अगर दोनों अवेलेबल हैं तो मैं वो दोनों ही आप सबको प्रोवाइड कर देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश की मांग करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक वीकली क्वेश्चन होता है जो मेन्स के पैटर्न पर होता है, वो आपको दिया जाएगा और साथ ही हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भिजवाया जाएगा। मित्रों इन सूचनाओं के बाद मुझे कुछ थोड़ी सी आप सबसे अलग से भी बातें करनी है और इन बातों का संबंध बेसिकली उन तथ्यों से है जो ईमेल के जरिए लगातार मुझसे कहा जा रहा है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण दे दूं। पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि बहुत से इस तरह के मेल आते हैं कि इंग्लिश पेपर्स की क्लिपिंग्स भी आप प्रोवाइड कीजिए, यहां तक कि बतौर शिकायत भी ये बात कही जाती है और आप लोगों की जो शिकायत है वो शर्माते है। मैं शिकायत के तौर पर आप लोगों के सामने नहीं कह रहा हूं, मतलब अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप प्यार वश ऐसा कर रहे हैं, आपको जरूरत है उसकी और आप ये समझ रहे हैं कि उस जरूरत को एकेडमी पूरा कर सकती है, तभी तो आप नाराजगी दिखा रहे हैं। जैसे कि बेटा बच्चा बेटी अपनी मां से नाराजगी दिखाती है तो आप नाराजगी अपनों से ही दिखा सकते हैं, तो मैं आप लोगों की नाराजगी को सरमाथे पर ले रहा हूं और अनुरोध को तो सरमाथे पर लिया ही जाता है। तो मित्रों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि खासकर कंटेंट के बारे में, करंट कंटेंट के बारे में ये रिक्वेस्ट आती है, जो भी करंट कंटेंट हम लोग डालते हैं आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हिंदी में, मैं इंग्लिश वालों को ही कह रहा हूं कि एक बार वो ध्यान से देखें, तो हिंदी में जो करंट कंटेंट होता है उसके लास्ट में बिल्कुल अंत में बकायदे उसका रेफरेंस दिया हुआ होता है कि ये जो करंट कंटेंट है ये किसके लेख से तैयार किया गया है, इसका लेखक कौन है और साथ ही साथ ये किस अखबार में छपा है, ये बकायदे उसमें मेंशन किया हुआ होता है। और ये जो करंट कंटेंट हम तैयार करते हैं यह आर्टिकल डेफिनेटली हम प्रेस क्लिपिंग्स में प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अखबार है, आपको हमने एक करंट कंटेंट प्रोवाइड किया और आखिरी में उसके लिखा हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस के इस लेखक से तैयार किया गया है प्रकाशित, तो मान करके चलिए कि इस लेखक का आर्टिकल आपको प्रेस क्लिपिंग्स में इंडियन एक्सप्रेस का प्रोवाइड किया जा चुका है, वो ऑलरेडी वहां है। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों की डेट मैच नहीं करती है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन होता है, एडिटिंग होती है, कई उसमें ढेर सारा काम छिपा रहता है, तो डेट मैच नहीं करती है, तो ये एक समस्या हो सकती है। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम लोग डेट उसमें डालना शुरू कर सकते हैं कि ये किस डेट के अखबार से लिया गया है, अदरवाइज मित्रों वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ मेल इस तरीके से भी मिले हैं कि आप अंग्रेजी अखबारों के क्लिपिंग्स ही क्यों नहीं, क्योंकि अंग्रेजी अखबारों की क्लिपिंग्स क्यों नहीं डालते, मित्रों अंग्रेजी अखबार की क्लिपिंग्स भी हम लोग डालते हैं, 4 अंग्रेजी अखबार हम लोग स्कैन करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू अखबार जिसका नाम आप सबने खूब सुना है और आप सबका खूब उसके प्रति आकर्षण भी होता है, और इसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स जो अर्थव्यवस्था से संबंधित अखबार है। 4 अखबार इंग्लिश के होते हैं और इनकी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये बात अलग है कि शायद आप जितनी संख्या चाह रहे होंगे उतनी संख्या हम लोग न दे पा रहे हों, और उसके पीछे रीजन है। मुझे नहीं लगता है कि संख्या बढ़ाने से आपके सिलेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट लगती है मैं वही आप सबको प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको और भी ज्यादा क्लिपिंग्स की जरूरत हो मित्रों, तो फिर उसका एक ही उपाय है कि या तो आप ऑनलाइन इन अखबारों को देख लें या फिर आप अखबार ले लें। लेकिन चारों अखबारों में जो महत्वपूर्ण लेख छपते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वे आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जहां तक मेरी अपनी समझ है उसके हिसाब से। तो मित्रों ये कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी, क्योंकि बहुत सारे मेल इससे संबंधित आ रहे हैं। आइए मित्रों अब हम न्यूज एनालिसिस के तहत बात करते हैं। मुख्य विषय के रूप में आज हम लोग जनहित याचिकाओं पर कुछ बातें करेंगे, हालांकि वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन देखते हैं, पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। मित्रों चौगम की बैठक कल शुरू हो गई है, इसके बारे में मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं। बैठक खत्म होने के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आता है और फिर उस पर हम लोग बातें करेंगे। तब तक आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स भी हम लोगों को मिल जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट खबर छोटी सी है अखबार में, हो सकता है कि आप लोग इससे मिस कर जाएं, लेकिन सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और मित्रों वह है हापुस आम के बारे में। ये मैंगो है, हापुस आम, और हापुस आम के पेटेंट को लेकर के अभी जो निर्णय आया है, डिपार्टमेंट का ही निर्णय है, और उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, चाहे तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। निर्णय में यह कहा गया है कि पाल घर से सिंधु दुर्ग तक कोंकण का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किसी भी कोने में, उस क्षेत्र के किसी भी कोने में अगर कोई आम हो रहा है, पक रहा है, तो वह हापुस आम है, यानी कि उसी प्रजाति का आम हापुस होगा। तो मतलब एरिया के हिसाब से उन्होंने उस आम के बारे में यह निर्णय दिया है। तो जो कोंकण एरिया है, जो इन्होंने कहा कि पाल घर से सिंधु दुर्ग तक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए और कोंकण शब्द को ध्यान रखिए, और इसका संबंध हापुस आम से है। मित्रों मैं आपको एक लेख प्रोवाइड कर रहा हूं जो राष्ट्रीय सहारा में छपा है, राम कुमार वर्मा जी पर। राम कुमार वर्मा जी देश के बहुत ही जाने माने चित्रकार रहे, अभी उनका कुछ ही समय पहले निधन हुआ है। और अगर आप हिंदी लिटरेचर में जरा भी रुचि रखते हैं तो निर्मल वर्मा जी का नाम आपने सुना होगा, महान उपन्यासकार और कहानीकार थे। मतलब उनके उपन्यास कहानियां बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से लिखी जाती हैं, आप एकदम अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। मैं तो बहुत ही प्रशंसक रहा हूं निर्मल वर्मा जी का, मुझे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सुनने का भी सौभाग्य मिला है निर्मल वर्मा जी को। उनके भाई थे राम कुमार वर्मा। तो एक क्लिप मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, थोड़ा सा आप उसे देख लीजिएगा। आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर जो विषय होता है उसमें आपकी हो सकता है कि वो थोड़ी सी मदद करे, और साथ ही प्री में भी संभव है कि इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं। मित्रों आज प्रेस क्लिपिंग्स में ही मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं अभी मुख्य विषय पर आऊंगा, आप मत सोचिएगा कि मैं प्रेस क्लिपिंग्स की बात करने लगा। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इसे मैं बता दूं, नहीं तो बाद में हो सकता है कि भूल जाऊं। एक मैं आपको आर्टिकल उपलब्ध करा रहा हूं दैनिक भास्कर का, ये डॉक्टर नरेश त्रेहन का लिखा हुआ आर्टिकल है जो खासकर स्वास्थ्य के बारे में है, स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल पर आपको नोट्स बनाने चाहिए। आप इस पर नोट्स कैसे बनाएंगे, देखिए इस आर्टिकल के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं, और आप लोग थोड़ा सा इस पर होमवर्क कीजिए। आप यूं कह लीजिए कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सैटरडे और संडे को ध्यान में रखते हुए आपको आपके सैटरडे संडे का कुछ हिस्सा मैं छीन रहा हूं। मित्रों आप केवल इसमें यह देखिए कि शुरू के हिस्से को तो चलिए छोड़ दीजिए, शुरू का हिस्सा मतलब हमारे देश की स्वास्थ्य स्थिति क्या है, क्या क्या किया जाना चाहिए, अगर वो पहले वाला हिस्सा। बाद में उन्होंने जो आइडियाज दिए हैं, आइडियाज दिए मतलब क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो समझ लीजिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसे आप प्वाइंट वाइज नोट करते चले जाएं, केवल प्वाइंट वाइज नोट करें। तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनकी चर्चा अक्सर की जाती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको बिल्कुल नए मिलेंगे। और सच पूछे तो ये जो पॉइंट्स हैं, यही विचार है आपके और यही आपको इनफैक्ट किसी भी टॉपिक का, ये तो है ही है, किसी भी टॉपिक की समीक्षा करने के लायक बनाते हैं, क्योंकि उसमें विचार है। तो उन विचारों को आप फिर उलटते पलटते हैं और उलटने पलटने की ही प्रक्रिया को हम समीक्षा करना कहते हैं, एनालिसिस करना कहते हैं, क्रिटिकल एग्जामिन करना कहते हैं। तो आप इस पर काम कीजिए और ये मान करके चलिए कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर तैयारी कर ली है, बस बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हाँ, बाद में जब आप स्वास्थ्य पर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे और इन आइडियाज से अलग आपको कुछ पढ़ने को मिल जाता है, कुछ फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो आप उन्हें भी नोट करते चले जाइए, बस बात खत्म हो गई। कोई आपको इसका स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, राइट? तो आप ये होमवर्क कीजिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं जनहित याचिका वाले अपने मुख्य विषय पर। दोस्तों, अखबारों में आज आपने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, काफी कुछ पढ़ा है कि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जिसमें जस्टिस जज लोया साहब की मृत्यु को लेकर के, अब इसकी बैकग्राउंड में मैं नहीं जा रहा हूं, समय बहुत कम है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन टिप्पणियां की हैं और मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणियां हैं ये मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, पहले उन्होंने क्या टिप्पणी की। एक टिप्पणी ये है कि जज लोया के मृत्यु के बारे में बकायदे उनके साथ जो चार जज थे उन्होंने अपना बयान दिया और उस बयान के तहत यह किया बताया गया कि जो जज साहब की जो मृत्यु हुई है वो एक प्राकृतिक मृत्यु थी। इसके खिलाफ आप, इसके बाद फैसला हो गया कि वो प्राकृतिक मृत्यु थी, बात खत्म हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी। मीडिया में दूसरे खबरें आने के बाद इसको फिर से उठाया गया और फिर जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसी की सुनवाई करते हुए, सुनवाई क्या मतलब, उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, मतलब टिप्पणी है कह लीजिए। तो पहली बात तो उन्होंने कही कि अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप न्यायाधीश, जो चार न्यायाधीश के बयान हैं उन पर आप शक कर रहे हैं, जबकि न्यायाधीशों के बयान पर शक करने का कोई कारण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि मतलब एक तरीके से इतनी ज्यादा पीआईएल आने लगी है सरकार के पास, इतना ज्यादा सरकार के पास नहीं, न्यायालय के पास इतनी ज्यादा जनहित याचिकाएं आने लगी हैं कि केवल हम उसी को ही अब सॉल्व करने में, उन्हीं की ही सुनवाई करने में उलझ गए हैं और जो दूसरी जो फैसले होने हैं वो लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यायालय का जो समय है वो बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। लेकिन तीसरी बात जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है और जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, वो उन्होंने कहा है कि इन जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालयों का राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि राजनीतिक झगड़े होते हैं और उस राजनीतिक झगड़े को सेटल करने के लिए नहीं, मतलब उसके लिए फिर न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं और फिर बेकार के न्यायालय उसमें उलझता है। ये बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि जनहित याचिकाओं के जरिए न्यायालय का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। तो मित्रों, इस पर आप लोग सोचिए, ध्यान रखिए इस टॉपिक को और जब भी आपको कुछ पढ़ने सुनने को मिलता है तो प्लीज आप उसे नोट करते जाइए और मुझे लगता है कि आगे इस पर आर्टिकल आने चाहिए। मित्रों, मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स तो मैं आपको एक दो के बारे में बता ही चुका हूं। एक मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हिंदुस्तान की उपलब्ध करा रहा हूं, जो है खतरे में सुंदरवन को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस की दृष्टि से। इसमें से भी आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि सुंदरवन को किन किन चीजों से खतरा हो रहा है, संकट क्या है सुंदरवन के, इसमें कुछ बहुत अच्छे और लेटेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर। आज मुझे कुछ मेल मिले हैं और उस मेल के तहत उन्होंने अपनी सफलता की घोषणा की है, तो मैं पहले उन अपने चार नौजवान साथियों के नाम लूंगा। उसमें एक है मित्रों श्रवण कुमार जांगिर, जो जयपुर से हैं और हमारे सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट हैं। उनको उनका क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन हुआ है बैंक ऑफ इंडिया में। दूसरी है भारती साहू, जो बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने अपना बैच नहीं लिखा है लेकिन अपना आईडी नंबर लिखा है। आप छत्तीसगढ़ के पीएससी के प्री में आपका सिलेक्शन हुआ है। तीसरे मित्र हैं अजय वीर सिंह, मथुरा से हैं। फोर्थ बैच के हैं, आपका सिलेक्शन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री में हुआ है, और अंतिम मित्र हैं बबीता सोनी, सेवंथ बैच की हैं, आपका भी सिलेक्शन मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री में हुआ है। तो श्रवण, भारती, अजयवीर और बबीता, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से इन सफलताओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आगे भी आप सफल होते जाएं इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। मित्रों, अब मैं अपने सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और साथ ही उनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं: राजीव रोशन, चंद्रशेखर यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, नितिन मिश्रा, अनिल मक्कड़, योगेश कुमार साहू, संजीव द्विवेदी इलाहाबाद से, चामेलू राम पटेल, विशाल कुमार और आयुष सिंह। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। साथ ही आप सबसे दो दिनों के लिए छुट्टी की इजाजत भी चाहूंगा। नमस्कार।